नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बेहद खास किताब के जरिए।
जी,
किताब का नाम है विवाह शादियों में हमारा दृष्टिकोण साफ रहे, और ये विवाह जैसी संस्था पर खासकर आज के माहौल में एक गहरी नजर डालती है।
हाँ बिल्कुल, जहाँ सामाजिक दबाव और दिखावा ये सब बहुत हावी हो गया।
सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जरिए विवाह के सही अर्थ को समझें, जिम्मेदारियों को जानें, और वो जो फिजूल खर्ची और गलत रीति रिवाज है ना,
हाँ,
उनसे जो दिक्कतें पैदा होती हैं, उन पर भी थोड़ी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं।
जरूर, वंदनीय माताजी का नजरिया बहुत साफ था। वो विवाह को सिर्फ एक रस्म नहीं मानती थी।
अच्छा,
उनके लिए ये दो आत्माओं का मिलन था, एक नए परिवार का सृजन, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वो कहती थी जैसे दो और दो मिलकर चार नहीं 11 बनते हैं।
हाँ, ये सुना है मैंने।
वैसे ही पति पत्नी का सही मेल एक नई शक्ति पैदा करता है। पर ये तभी होता है जब नींव सही हो, मतलब गलत तरीके से अपनाया गया अमृत भी जहर बन सकता है। तो सबसे पहली बात जो वो कहती हैं, वो है परिपक्वता, शारीरिक और मानसिक।
हाँ, ये तो जरूरी है।
लड़का लड़की तैयार होने चाहिए जिम्मेदारी के लिए। उन्होंने कम उम्र में शादी को स्वास्थ्य और भविष्य दोनों के लिए खतरनाक बताया है।
आजकल भी कहीं कहीं हो जाता है ये।
हाँ हो जाता है, पर शरीर का विकास अधूरा रह जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसीलिए उन्होंने लड़कियों के लिए कम से कम 18 साल और लड़कों के लिए 22 साल की उम्र का सुझाव दिया था।
ये तो हुई उम्र की बात, लेकिन आजकल जो साथी चुनने का तरीका है उसमें बाहरी रंग रूप पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसके बारे में क्या विचार है उनके?
हाँ, ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया उन्होंने। वो इसे उथली सोच कहती थी।
उथली सोच।
जी, उनका मानना था कि गुण, कर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य और हाँ, घर गृहस्थी चलाने की क्षमता और समझ, ये चीजें कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि रंग रूप पर टिके रिश्ते तो मतलब कभी भी फिसल सकते हैं, सुंदरता तो ढल जाती है, गुण साथ रहते हैं।
बिल्कुल सही। और फिर शादियों की रस्में आजकल तो जैसे एक इवेंट बन गया है पूरा।
हाँ,
बहुत खर्चा, बहुत दिखावा।
अरे हाँ, इसी पर तो उन्होंने बहुत जोर दिया है। पुस्तक में विवाहोन्माद शब्द का इस्तेमाल किया है।
विवाहोन्माद मतलब शादी का पागलपन।
बिल्कुल, पागलों की तरह पैसा उड़ाने की होड़, इसकी वो कड़ी आलोचना करती हैं। उनका आग्रह था कि विवाह की रस्म बहुत सादगी से, पवित्र और आध्यात्मिक माहौल में होनी चाहिए। ये फिजूल खर्ची खासकर हिंदू समाज में एक बीमारी बन गई है। परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, मूल्यों का भी पतन है।
और वो बुढ़िया पुराण वाली बात भी है शायद।
हाँ हाँ, उसका भी जिक्र है। मतलब पुरानी पीढ़ी की, खासकर कुछ स्त्रियों की, वो सोच जो इन खर्चीली और दक्यानुसी परंपराओं को शांत समझती हैं, उन्हें बनाए रखती हैं।
अच्छा,
तो पुस्तक सलाह देती है कि इस सोच को बदलने के लिए समझदारी और क्या कहते हैं, चतुराई से काम लेना होगा, टकराव से नहीं।
और ये दहेज और जेवरों का जो लेन देन है उसपे भी तो बहुत जोर रहता है आजकल।
हाँ, और वंदनीय माताजी इसे भी गलत मानती हैं। दहेज मांगना तो गलत है ही, पर लड़की वालों का भी वो जो जेवर कपड़ों से अपनी हैसियत दिखाने का मुंह होता है ना।
हाँ, वो भी है।
वो भी हानिकारक है। अहंकार बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है और पैसे की भयानक बर्बादी होती है। एक बड़ी मतलब चौंकाने वाली बात उन्होंने कही।
क्या?
कि बहुत ज्यादा जेवर पहनना सुंदरता नहीं बल्कि फूहड़पन का प्रदर्शन है।
अरे,
उनका सुझाव था कि वो पैसा अगर सही जगह लगाया जाए, निवेश किया जाए, तो भविष्य में काम आएगा।
ये तो काफी सीधी बात कह दी। अच्छा, इन सब चीजों का समाज पे क्या असर पड़ता है? सिर्फ आर्थिक बोझ ही है या कुछ और भी है?
असर बहुत गहरा है और दुखद भी। सबसे गंभीर बात तो ये है कि ये जो खर्चीली शादियां हैं ना, इनका बोझ अक्सर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
भ्रष्टाचार को? कैसे?
लोग शादी का खर्चा पूरा करने के लिए क्या कहते हैं, रिश्वत लेने या बेईमानी करने जैसे गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। परिवार आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पीछे रह जाता है। और जिनके पास गलत तरीके से कमाने का मौका नहीं होता, वो कर्ज लेते हैं और फिर जिंदगी भर चुकाते रहते हैं।
ये तो बहुत ही गंभीर बात है।
और इसका एक और दुखद पहलू ये है कि इस बोझ के कारण कई लड़कियां या तो अविवाहित रह जाती हैं,
हाँ,
या फिर उनकी शादी बेमेल जोड़ों से कर दी जाती है, जैसे कोई बूढ़ा या बीमार व्यक्ति,
और फिर उनका जीवन नरक बन जाता है।
उफ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर इस सब से निकलने का रास्ता क्या बताया वंदनीय माताजी ने?
रास्ता है हिम्मत और समझदारी। साफ आवाहन है उनका कि हमें इन मूर्खतापूर्ण दिखावे वाली परंपराओं को नकारने का साहस दिखाना होगा।
हिम्मत चाहिए इसके लिए। हाँ, और अपने बच्चों को भी समझाना होगा कि असली शान शालीनता और सादगी में है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि भ्रष्ट परंपराओं को बढ़ावा देने से अच्छा है कि सही साथी न मिले तो अविवाहित रहा जाए।
बिल्कुल
स्पष्ट कहा है, दहेज न लें न दें, शादी सादगी से करें। अगर लड़की वाले बेटी को कुछ देना चाहें तो वो स्त्री धन के रूप में हो।
स्त्री धन?
हाँ, जिसका कोई दिखावा न हो और वो पूरी तरह से लड़की की अपनी संपत्ति हो। और लड़के वालों को भी बारात, बाजे, आतिशबाजी, महंगे कपड़े, इन सब में फिजूल खर्ची से बचना चाहिए।
सही बात है।
पुस्तक में सामूहिक विवाहों को भी एक अच्छा उत्साह बढ़ाने वाला विकल्प माना गया है। इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
इसमें स्त्रियों की भूमिका पर भी कुछ खास कहा गया है क्या? क्योंकि अक्सर वो भी इन रिवाजों में शामिल होती हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात उठाई है। अक्सर इन परंपराओं का सबसे बुरा असर स्त्रियों पर ही पड़ता है। वो खुद पीड़ित होती हैं।
जी,
लेकिन कई बार वे दूसरी स्त्रियों के प्रति, जैसे अपनी बहू या बेटी के प्रति, कठोर हो जाती हैं और इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाती हैं।
हाँ, ये देखा जाता है।
तो वंदनीय माता जी का आग्रह है कि स्त्रियों को स्त्रियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। लड़कियों के प्रति तिरस्कार या लड़कों के लिए अनावश्यक तरफदारी, इसका विरोध करना चाहिए। नारी को कम से कम नारी पक्ष से तो स्नेह और सम्मान मिले।
बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पुस्तक का सार यही लगता है कि विवाह एक पवित्र जिम्मेदारी है। इसे सामाजिक दबाव, दिखावे और फिजूल खर्ची का मंच ना बनाएं।
हाँ,
सादगी, आपसी समझ, परिपक्वता और सही मूल्य, इन पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल सही कहा। और आग्रह यही है कि हम सब, खासकर वो लोग जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे महिला जागरण से जुड़े लोग, वो पहले अपने परिवारों में इस नजरिए को अपनाएं।
हाँ, शुरुआत खुद से करनी होगी।
जी, और फिर समाज में इसका प्रचार करें। ऐसी हानिकारक परंपराओं को किसी भी तरह का प्रोत्साहन ना दें।
यहाँ पे एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए।
जरूर।
कि जब हम जानते हैं कि ये खर्चीली और दिखावे वाली परंपराएं नुकसानदेह हैं, तो फिर व्यक्तिगत स्तर पर इनसे दूरी बनाने में हमें क्या चीज रोकती है?
बिल्कुल।
और इस बदलाव की शुरुआत के लिए वो पहला छोटा सा लेकिन ठोस कदम क्या हो सकता है?